शांति,
ओम शांति।
10 लोगों ने गुड मॉर्निंग बोला, 15 लोगों ने ओम शांति बोला, और सब क्या कर रहे हैं? जिन्होंने जवाब नहीं दिया पता है क्या कर रहे थे? टीवी। हम लोग टीवी देख रहे थे ना, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं आई ना, कितने दिन तक देख रहे थे, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, वहां जाएंगे तो मदद करेंगे, तो जो 3 दिन आपके शिविर में आएंगे तो टीवी देखना बंद। मैं साल में ऐसे 300 लेक्चर देता हूं, परंतु देखा है कि जब लोग अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं तो नई नई बातें याद आती। मैंने अच्छी तैयारी भी की है, परंतु मैं क्या बोलूंगा उसका आधार आपके ऊपर है। मेरी बात समझ में आए तो गर्दन हिलाओ, तो मैं भी समझूंगा कि सो नहीं, कोई हंसने की बात हो जोर से हंसो। हंसना आता है? हंसना आता है? सिद्ध करके बताओ। तो नहीं आता है ना, 20-25 लोगों को हंसना। बच्चे दिन में 80 बार हंसते, परंतु जैसे जैसे बड़े होते जाते हंसना भूल जाते। क्या करो, छोटी बात को बड़ी बना के हंसो। हंसने के लिए कोई कारण चाहिए ना, बिगर कारण के हंसेंगे तो मेरे क्लिनिक में भेज देंगे। हंसने के बहुत सारे कारण मिलने, ताली बजाना तो आता है ना, क्यों भी भूल गए ताली नहीं बजाता। ताली बजाने के भी बहुत सारे कारण, आपको रोज एक एक कारण बताऊंगा ताकि ताली बजाना भूल न जाए। एक अच्छा सा कारण है ताली बजाने का, कहते हैं कि एक बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में डॉक्टरों की मीटिंग हो ना, तो किसी ने पूछा कि होते हैं ना पुरुष में भी नहीं स्त्री में भी, क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसे लोगों को आपने कभी देखा है पेशेंट के रूप में? तो सब डॉक्टर सोचने लगे कि अरे कभी ये पेशेंट के रूप में आए ही नहीं, क्यों पता है? सारा दिन ताली बजाते हैं तो पेशेंट मिलते हैं, जिसको बीमार नहीं होना है तो ताली बजाना। हंसना, ताली बजाना, ये तो स्कूल की पढ़ाई है, कोई बड़ी बात नहीं। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है इन चीजों को फील करना। देखो, जब तक फीलिंग नहीं आएगी परिवर्तन नहीं आ सकता। तो फील करेंगे सभी? ठीक है, शुरू करें। 2-4 लोग ही बोलते हैं और सबको भेजा आ गए। शुरू करने से पहले मन को भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि गहरी बात है। हंसना ताली बजाना भी ठीक है, परंतु सचमुच समझ प्राप्त करने की जरूरत है, तो इसलिए मन को तैयार करना होगा। 2 मिनट हम ध्यान में बैठेंगे, कमर को सीधे रख करके बैठिएगा, दोनों पैरों को जमीन पे कंफर्टेबली बैठे, गीत बजेगा, सारा मन को उसी में खो जाओ, मन को अच्छे से तैयार करो।
Thank you.
एकाग्र करते हुए गहराई से सारी बात को समझेंगे कि सचमुच क्रोध को अलविदा कैसे कहे। सहज नहीं है, परंतु फिर भी अगर गहराई से सारी बात को हम समझ लेंगे तो अलविदा कहना भी संभव है। मलाड एक्सप्रेस हाईवे पे टाइम्स ऑफ इंडिया का सबर्बन प्रेस, कई वर्षों पहले की बात है, एक बार वहां पर हाई लेवल मीटिंग हो रही थी। उसमें उनके जनरल मैनेजर, मैनेजर और भी सभी एग्जीक्यूटिव थे। करीब एक घंटे के बाद एक एग्जीक्यूटिव ने जनरल मैनेजर को पूछा कि सर मैं कब से देख रहा हूं हम बार बार पानी पी रहे हैं, क्या आप वाटर थेरेपी करते हैं? दूसरे मैनेजर ने कहा कि सर क्या आपको कॉन्स्टिपेशन होता है बार बार पानी पीते हैं? तो उन्होंने कहा न तो मैं वाटर थेरेपी करता हूं न मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मैं तो एंगर कंट्रोल थेरेपी कर रहा हूं, क्योंकि मीटिंग में कई बातें ऐसी होती जो मुझे पसंद नहीं होती है। तब अंदर में गुस्सा आता है तो तब गुस्सा तुरंत व्यक्त करने के बदले मैं आधा ग्लास पानी पी लेता हूं और फिर मन को बैलेंस रख करके आपको जवाब देता हूं। तो ऐसे हमको भी बहुत कुछ समझना है, क्योंकि आज 21वीं सदी में परिस्थितियां तो और आने वाली हैं जो आपको गुस्सा दिलाएगी, जिसमें इरिटेशन होगा, परंतु उस समय भी क्या करना है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि को पूछा कि जीवन क्या है, जीवन कहाँ है? उन्होंने कहा हमने विस्डम में खो दिया है ना, विवेक में, शाणप में हमने जीवन को खो दिया है। विवेक कहाँ है, विस्डम कहाँ है? तो कहा हमने उसे ज्ञान में खो दिया है। ज्ञान कहाँ है, हमने उसे इंफॉर्मेशन में खो दिया है। आज हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है परंतु ज्ञान नहीं है, विस्डम नहीं है। तो पूरी विस्डम को प्राप्त करना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर हम अपने व्यवहार को देखें, आप अगर मानव के व्यवहार को देखेंगे तो उसको एक स्पेक्ट्रम के रूप में समझ सकते हैं। स्पेक्ट्रम समझते हैं ना लोग, यदि एक कोना होता है उसका दूसरा कोना है, तो ये स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो पहले कोने पर तो हम इच्छाओं को दबा देते कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हुआ है ना, किसने कुछ कह दिया, आपको कोई बात पसंद नहीं आई, तो आप क्या करते हैं, कुछ बताने के बदले उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मन भी डिस्टर्ब रहता है। परंतु उसके दूसरे छोर पे अगर हम देखें, दूसरे एंड पर अगर देखा जाए तो है एग्रेशन, दूसरे एंड पर है क्रोध, वह भी उतना ही हानिकारक है। परंतु अच्छी बात क्या है, आमतौर पर भी माना जाता है कि नीच का रास्ता सबसे अच्छा होता है। कोई भी बात आए अगर एक्सट्रीम में सोचना उसके बदले बीच का रास्ता अपनाओ, तो यहां पर भी क्रोध मुक्ति में बीच का रास्ता सबसे अच्छा है, और वो बीच का रास्ता क्या है? एसर्टिव बिहेवियर, कि अपनी भावनाओं को दबाओ नहीं परंतु क्रोध भी नहीं कर। तो आप कहेंगे क्या करें? तो उसे बैलेंस रख करके व्यक्त करो। क्रोध ऐसे बुरा नहीं है। क्यों क्रोध बुरा? क्योंकि उस समय हम कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, बाद में बस प्रायश्चित भी हो, परंतु उस समय तो आपने एक बार बोल दिया, तो इसके कारण क्रोध बुरा है। क्रोध में जो आप एक्साइट होते हैं कि उसकी बुरी इफेक्ट है, अगर वही बात बोली जाए परंतु तर्क संगत बोली जाए, ऐसे उद्देश्य से बोली जाए, इस प्रकार से बोली जाए कि वो सुनने वाले पर उसका बुरा प्रभाव ना पड़े और आपकी भावनाएं भी व्यक्त हो जाए, तो वह स्वस्थ है, कि जिसको कहेंगे यह एसर्टिव बिहेवियर है ना। कुछ एक उदाहरणों के द्वारा मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। एक बार एक पति पत्नी एक पत्नी घर में टीवी देख रहे थे। कुछ समय के बाद उसके पति ऑफिस से आए, फ्रेश होकर के आए, और उन्होंने चैनल बदल दिया, तो उसको इतना गुस्सा आया कि बाजू में सोनी का एक्सपेंसिव वॉकमैन पड़ा था, टीवी पे फेंका उसने, टीवी भी टूट गया, वॉकमैन भी टूटा। पर उस समय तो गुस्से में उसने कर दिया, परंतु एक बार साइकोथेरेपी के सेशन में जब उसे ये इवेंट याद आई तो उसने खुद कहा कि वह मेरी सीरियल मिस होने का भी दुख नहीं है, परंतु आज तक भी वॉकमैन और टीवी टूटा था उसका दुख अंदर में है। ऐसे बिहेवियर क्या होती? चलो ये बात तो ठीक है कि वो इम्पोर्टेंट सीरियल अपनी देख रही थी, वो तो उसको देखने थी, वो पसंद नहीं आया है ना, वो अच्छा नहीं लगा कि क्यों किया मेरे पति ने ऐसा। परंतु तब अगर मन का संतुलन रख करके वो बोलती कि जरा रुको, मुझे ये इम्पोर्टेंट चैनल देखनी है, तो शायद पति मान जाते कि चलो तुम देख लो, थोड़ी देर के बाद जो चैनल तुमको देखनी हो देख। और भी कोई रीति से मन का संतुलन रख के उसको बता सकती थी कि थोड़ी देर के बाद आप इसको देखना, अभी मुझे देखने दो। या दूसरा सोल्यूशन ये भी था कि दूसरा छोटा टीवी देख ले लेते, कि दोनों जो सीरियल चाहे वो देखे, परंतु क्रोध से उसे नुकसान हुआ। एक बार एक व्यक्ति ऑफिस से घर आया ना, उसने 1000 रुपये की नोट और छोटी छोटी नोट के टेबल पर रख दी। उनका छोटा सा 1.5-2 साल का बच्चा खेलता खेलता आया, पहले नोट के साथ खेल रहा था, फिर उसने 1000 रुपये की नोट फाड़ दी, तो उसको इतना गुस्सा आया, बच्चे की इतनी पिटाई कर दी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और हॉस्पिटल का बिल आया 8000 रुपये। तो एसर्टिव बिहेवियर क्या होती है कि उसको भले आंख दिखा दे, उससे भी ज्यादा ऐसी कई परिस्थितियों में हमारे सोच में बदलाव की जरूरत होती है। यहां पर उसके उसको यह सोचना चाहिए था कि ये मेरी गलती थी, गुस्सा जो आता है ना वो लॉस के कारण। उसको बच्चे पे गुस्सा आया कि 1000 रुपये का लॉस हो गया, परंतु तब अगर वो ये सोचता ना कि चलो आज तो वो पैसे वहां पर पड़े थे, अगर कल मैं कोई भी पॉइजन की बॉटल रख देता तो वो भी बच्चा को पी लेता, तो मेरी गलती है कि घर में छोटा बच्चा है, ऐसी कोई चीजें वहां नहीं रख सकते, तो है ना, बच्चे को चेंज नहीं करना है, मुझे चेंज करना है। तो कहेंदार विचारों में बदलाव या तो एसर्टिव बिहेवियर है ना, उसको व्यक्त करो, परंतु कैसे व्यक्त करते हैं वह इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आने वाले दो दिनों में भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत कुछ सीखना है। वह जो एसर्टिव बिहेवियर है वह न केवल क्रोध के लिए, तो तू सारे जीवन में आपको मदद करेगी। आज कई लोग हैं जो ना नहीं बोल सकते, कुछ भी हो जाए वो किसी को ना नहीं बोल सकते, और वो गलत है। कई बार ना बोलना भी जरूरी होता है, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सप्रेशन भी अच्छा नहीं है, एंगर भी अच्छा नहीं है, परंतु बेस्ट क्या है? बोलो बोलो क्या है? अगर हिंदी में कहना हो कि संतुलन से अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना सीखो। सप्रेशन कैंसर करता है। आज गुस्सा इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कई लोग इस पर बहुत अच्छे से बताते हैं कि अपनी फीलिंग को दबाओ नहीं, है ना, फीलिंग्स को दबाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। तो चलो ये बात तो ठीक है, परंतु एंगर हार्ट अटैक करता है, एंगर से ब्रेन भी डैमेज होता है। तो इसीलिए जो बेस्ट है वह है एसर्टिव बिहेवियर, हमारी हेल्दी बिहेवियर है। कई बार व्यक्त भी करना पड़े तो ऐसे रूप में व्यक्त करो कि किसको हानि न हो। जापान में कई बड़ी बड़ी कंपनियों में टेरेस पे बॉसेस के स्टैच्यूज बनाए होते हैं, और असिस्टेंट है जब बहुत गुस्से में आते हैं ना, तो वहां पर जाकर के उस स्टैच्यू को बहुत मुक्के भी मार के आते हैं, है ना, पंचिंग बैग बोलते हैं इसको, या तो गालियां भी देकर के आते हैं, परंतु क्योंकि उस स्टैच्यू को दी तो बुरा नहीं है, है ना, बॉस को दे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो ऐसे कुछ सोच सकते हैं कि वेंटिलेट करना है, परंतु युक्ति से वेंटिलेट करो, है ना। एक व्यक्ति बहुत गुस्से वाला था, है ना, तो उसकी पत्नी को भी गुस्सा आता था, परंतु थोड़ी समझदार थी, तो है ना, पति गुस्सा करता था तो वो सामने गुस्सा नहीं करती थी, सोचा कि नहीं तो और बड़ी समस्या होगी। तो क्या करती थी मालूम है? जैसे थोड़ा गुस्सा उसको तो बाथरूम में जाइए, जल्दी जोर जोर से सांस लेंगी, अपना गुस्सा निकाल देगी और फिर पीसफुल होकर आएगी और अपना काम करना शुरू करेगी। तो ऐसे कोई ना कोई और भी युक्ति हम ढूंढ सकते हैं वेंटिलेट करने की, परंतु क्रोध नुकसानकारक है। देखो ये पावरफुल स्टेटमेंट है ना, इस पर जरूर सोचना कि क्रोध को दबाना अच्छा नहीं है, परंतु उससे भी बहुत बड़ा ऑप्शन है कि क्रोध फील ही ना करो। देखो आप लोग क्या सोच रहे हैं मालूम है? मुझे मालूम पड़ जाता है ना, आप लोग सोच रहे हैं कि इम्पॉसिबल कि क्रोध को फील ना करे। इम्पॉसिबल का अर्थ मालूम है? सुना है ना, इम्पॉसिबल का स्पेलिंग क्या होता है? क्या होता है? हाँ, आई एम पॉसिबल। तो ये सोचो कि भाई मैं कर सकता हूं, हायर स्टेज है, परंतु जब जो लक्ष्य होता है वहां तक व्यक्ति जरूर पहुंच जाता है। बोले कितना भी है, ये सोचो कि आंतरिक स्थिति को ऐसा बनाना है। विस्तार से हम इसकी चर्चा करने वाले हैं कि जितनी आंतरिक अवस्था आपकी ऐसी हो कि भी परिस्थितियां भले आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है, कुछ समस्याएं आ रही है, परंतु इरिटेशन होगा ही। अब क्रोध है क्या वास्तव? क्रोध एक प्रकार से देखो तो मानसिक लकवा। क्रोध के दौरान जैसे कि मन को पैरालिसिस हो जाता है, शोर भले हमें लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, है ना, मैंने जोर से बोल दिया, चिल्ला दिया, हम कुछ कर रहे हैं, परंतु क्योंकि उस समय आपको समझ ही नहीं है क्या करना है ना, पैरालिसिस में कैसे व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है। तो वास्तव में एक प्रकार से साइकोलॉजिकल पैरालिसिस है। पैरालिसिस वाला व्यक्ति छटपटाएगा, पैर हिलाने की कोशिश करेगा परंतु कर नहीं पाता है। तो ऐसे ही हमको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, परंतु जो कुछ आप कर रहे हो वो एक्चुअली देखो तो यह चंद पलों के लिए पागलपन है। पागल व्यक्ति की क्या निशानी होती है? हाँ बोलो, पागल क्यों कहते हो? बोलते हैं ना कि पागल है, क्यों कैसे, किससे मालूम पड़ता है? बोलो बोलो, इसे चुपचाप नहीं बैठना, संतुलन नहीं होता है तो कहते पागल है। देखो क्रोध में भी संतुलन खो देते हैं, और क्या होता है, पागल व्यक्ति क्या करता है,
खुद को पता नहीं क्या करता है,
खुद को ही पता नहीं क्या करता है। तो हमको ही मालूम नहीं होता हम क्या कर रहे हैं क्रोध में। पागल व्यक्ति क्या करता है, तोड़फोड़ करता है। तो क्रोध में भी तोड़फोड़ होती है ना, है ना। देखो छोटी बात में कईयों के खून भी हो गए, तो क्रोध से ही हुआ। एक बार एक बहन छोटे बच्चे को पढ़ा रही थी और साथ साथ में सब्जी भी काट रही थी, तो लड़का गलती करता था समझाने को, पहले काटती बरोबर पढ़, फिर भी वो मिस्टेक करने लगा, फिर से कहा कि बरोबर पढ़, उसने कुछ लिख नहीं पढ़ा, फिर एकदम गुस्से में आई तो उसके हाथ पे चाकू मार। तो देखो क्रोध पागलपन है, तो सचमुच क्रोध वह बल क्षणिक पागलपन है, परंतु आज पागल व्यक्ति भी पागल नहीं कहलाना चाहता है, है ना। पागल को भी कहो साइकेट्रिस्ट के पास चलो तो क्या बोलता है मालूम है, मैं पागल थोड़ी हूं,
तुम लोग
पागल। तो ऐसे पागल व्यक्ति भी अपने आप को पागल नहीं कहलाना चाहता है, परंतु हम कैसे वो लेबल लगाते हैं। तो पूरा यह इस पर अटेंशन देना है, भूमिका क्यों तैयार कर रहा हूं कि आप उस पर परफेक्ट ध्यान दे सको। अब क्रोध पर विजय प्राप्त करने की युक्तियां क्यों अपनानी है, ये भी आप समझ लेंगे ना तो जाग जाएंगे, अच्छे से फील करना इन बातों कि जब जब भी हमें क्रोध आता है, थोड़ी चीड़ भी आती है, चलो गुस्सा नहीं भी आया परंतु अंदर में चिड़चिड़ापन आया, तो वो चीड़ भी हमारे मन और शरीर पर बहुत ही बुरा असर डालती है। वह कौन से अवयवों पर बुरा असर डालती, क्रोध के कारण हार्ट पर बहुत ही बुरा असर होता है। अब देखेंगे हार्ट की छोटी छोटी धमनियां, बल हार्ट सारे शरीर को खून पहुंचाता है परंतु उसको भी खून चाहिए काम करने के लिए, और हार्ट को जो खून पहुंचाते है वह छोटी छोटी धमनियां, तीन धमनियां होती है कि जो हार्ट को भी खून पहुंचाती है। तो जब आपको गुस्सा आता है तो वो धमनियां है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती, वो सिकुड़ जाती कि जिसके कारण वहां पर खून नहीं पहुंचता, किंतु तो बिल्कुल वहां खून जाना बंद हो जाता है। इसमें बहुत एक अच्छा प्रयोग किया है, कुत्तों पर प्रयोग किया कि एक कुत्ते का हार्ट है वो ओपन किया और ये जो ब्लड वेसल्स है उसके आगे एक यहां पर सेंटर होता है, वहां एक क्लिप लगा दी ताकि जो खून है वो थोड़ा थोड़ा ही पहुंच चुका है, और फिर वो कुत्ते को गुस्सा दिलाया गया, कैसे, है ना, दूसरे कुत्ते को खाना दिया उसको नहीं दिया तो भौंकने लगा, जब कुत्ते को गुस्सा आया तो एक बार तो जोर से ब्लड सप्लाई आई, लेकिन फिर एक आध मिनट के बाद ही उसे हार्ट अटैक आ, क्योंकि वह जो सेंटर था वो आगे सेंटर होता है, वो सेंटर ने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे हम भी जब गुस्सा करते हैं तो इसी प्रकार की इफेक्ट होती है। एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन आपके केमिकल्स है, वो रिलीज होते हैं जो ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं, हार्ट को ठीक से खून भी नहीं पहुंच पाता है। यहां तक डरेंगे तो नहीं ना, डरेंगे नहीं डरेंगे, अच्छा डरना नहीं ना। तो मैंने एक बार बताया एक व्यक्ति को हार्ट में तकलीफ हो गई, तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ा। ये सत्य घटना। लंदन में एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति, उसे हार्ट अटैक आया, उसे एक बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कुछ देर के बाद उसने नर्स को बुलाया तो नर्स को आने में देरी हुई, तो वो गुस्से में आ गया कि तुम लोग क्या समझते हो, इतना खर्चा मैं किसके लिए कर रहा हूं, एक सेकंड में आना चाहिए, मुझे कुछ हो गया तो देख लेना, तुम पर इतना केस करूंगा, करोड़ों पाउंड का आपका खर्चा हो जाने वाला, हॉस्पिटल बंद करा दूंगा। बहुत गुस्से में बोला, उसे दोबारा जोर से हार्ट अटैक आया और उसकी मृत्यु हो। अब इसके आगे क्या हुआ देखो, हाँ इसमें डरना है। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसका हार्ट फट गया, तो इतनी भयानक असर क्रोध की हो सकती है। हाँ कभी क्रोध करेंगे, अच्छा लगता है निकालने वाले सुनको आपको नहीं होने वाला। अच्छा क्रोध की इमीजिएट इफेक्ट है ना मसल्स पर होते, देखो गुस्सा करते हैं उनको सर के मसल्स है वह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सर दर्द हो सकते हैं। आज जो माइग्रेन जिनको होता है ना उसके और भी कारण है, परंतु जो जल्दी जल्दी चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को भी माइग्रेन का दर्द होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। एक जो विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए वर्तमान समय पर वह यह है कि आज भले हम बहुत हाइजीनिक होते हैं, है ना, क्लीनलीनेस है हमारे में, परंतु फिर भी वातावरण में भी वायरस होते हैं। जो वातावरण में वायरस होते हैं, समझो मच्छर से तो आप बच नहीं सकते कि भी डेंगू ना हो, परंतु वायरस से हम बच नहीं सकते। आप सारा दिन बंबई में यहां वहां जाते, वातावरण में वायरस है ही है ना, उसकी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, और उसकी इफेक्ट हो जाए तो कई बीमारी है ना, कॉमन कोल्ड से लेके ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि जिसका कोई इलाज नहीं। अभी अभी एक लड़की को वायरस आ गया तो ब्रेन डैमेज हो गया उसका, है ना, और कहां से आया पता नहीं वायरस। तो जब भी इस प्रकार के कीटाणु सामने आते हैं तब शरीर में एक प्रणाली, एक सिस्टम है कि जो हमें उनसे बचाती है, इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। जैसे कोई भी देश की सेना होती है ना, तो ऐसे ही यह भी हमारे अंदर में परमात्मा ने हमें वह सेना दी है कि कीटाणुओं से लड़ना, परंतु क्रोध से और टेंशन से वह इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, और जब वह सेना वीक हो जाती है तो ऐसे इन्फेक्शन हमें जल्दी लगते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्रोध पर भी विजय प्राप्त करना है, मन को सदैव स्टेबल रखना है। और ये क्यों होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल नाम के हॉर्मोन्स हैं, वह बढ़ जाते हैं और इम्यून सिस्टम सप्रेस होती है। क्रोध का ब्रेन पर भी बुरा असर होता है। चलो और जो सिस्टम पर बुरा असर होता है, कई लोग सोचते हैं कि अरे हम तो बड़े मैनेजर हैं, हम तो बड़े बिजनेसमैन हैं ना, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी क्यों तो चिंता करें। परंतु क्रोध से ब्रेन भी डैमेज होता है, ब्रेन में भी ठीक से खून नहीं पहुंचता है, या तो जो ब्रेन की ब्लड वेसल्स है वह ब्लड वेसल्स फट जाती है, वो बल में पता नहीं चलता है क्योंकि वो सूक्ष्म है। वह जो डैमेज हानि है वो थोड़ी सी है, परंतु आपको सप्ताह में एक बार एक क्रोध आता है, ठीक है डॉक्टर साहब रोज आता है सप्ताह में एक बार में, तो देखो कितना डैमेज होता जाएगा। और 15-20 साल के बाद आपका ब्रेन भी डैमेज होता है ना, बुढ़ापा जल्दी आता है, लकवा होने की संभावना भी बढ़ जाती है ना। तो यह सभी इम्पोर्टेंट कारण है कि क्यों क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। हाँ सब करेंगे क्रोध पर विजय, क्रोध पर अलविदा कहेंगे या नहीं? अलविदा। अच्छा यह मैंने बताया है कि क्षणिक पागलपन ना, पागल व्यक्ति की तरह ही हम व्यवहार करते हैं। अब ये सब समझाने के बावजूद भी कई लोग समझते कि नहीं क्रोध तो जरूरी है, क्यों ऐसा पता है? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं क्रोध से काम होता है। भी ऐसे ही समझाओ तो बच्चे पढ़ते नहीं है, लेकिन एक बार गुस्से में कहो तो बच्चा पढ़ने बैठ जाता है। या तो असिस्टेंट है वैसे काम नहीं करते, गुस्से में बोलो तो काम करने लगते हैं। परंतु वह जो है वह टेंपररी है। क्रोध कहते हैं कि वीक मोटिवेटिंग फैक्टर है और उससे काम करा सकता है, परंतु उसकी शक्ति जो है वो कमजोर है। वो शक्ति कमजोर होने के कारण अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। एक बार दो 11 साल की लड़कियां आपस में चर्चा कर रही थी, ध्यान से सुनना हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक लड़की ने उसकी फ्रेंड को कहा कि चल हम कुछ मस्ती करते ताकि माँ को गुस्सा आए, माँ को गुस्सा आता है तो मुझे खूब मजा आता है, माँ को गुस्सा आता है तो मुझे पक्का हो जाता है कि माँ मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं माँ को कंट्रोल कर रही हूं। तो बच्चे साइकोलॉजिकली सीख भी जाते। उसने आगे कहा कि माँ को गुस्सा आता है तो भले मुझे अपने रूम में 2 घंटा बंद रहना पड़ता है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे भले हमें लगे कि भी कुछ अच्छा नहीं, अच्छा नहीं हो रहा, गुस्सा करते भले सबॉर्डिनेट काम कर रहे परंतु कॉन्सेंट्रेशन से नहीं कर रहे, उमंग उत्साह से नहीं कर रहे है ना, अपनी पूरी एफिशिएंसी से नहीं कर रहे। आपको लगता है कि वे सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, अंदर में तो आपको गालियां दे रहे कि कैसा बॉस है। ओ यह भी सही बात, वास्तव में जो रिजल्ट मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। और भी देखो, डीन ऑर्निश ने बहुत अच्छा काम किया है हार्ट के पेशेंट्स पर। उन्होंने क्रोध के बारे में क्या कहा है कि यह सिर्फ समझना कि मुझे क्रोध आ रहा है और उसको व्यक्त करना वह ठीक नहीं है, वह इनफ नहीं है। अलग अलग तरीके से वो क्रोध को बढ़ावा देता है और हम अंधकार में ही भटकते रहते हैं। हमें लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं परंतु वास्तव में हम तो कंफ्यूज है, अंधकार में भटक रहे हैं। तो इसलिए यह सच्चा रास्ता नहीं है। दूसरे एक मनोवैज्ञानिक ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने ये बात बताई कि जो तर्क देते हैं लोग है ना, लोग तर्क देते हैं कि गुस्सा करना पड़ेगा उसी से रिजल्ट मिलता है ना, तब ये सब कुछ काम ठीक से होता है। तो वो जो तर्क है वो तर्क सही नहीं है और प्रयोगों के द्वारा भी ये सिद्ध हुआ है कि यह जो तर्क है वह सही नहीं है और जो भी उसके बारे में हमें प्रमाण मिले हैं कि वो उल्टे अपोजिट है। प्रयोगों के द्वारा जो प्रमाण मिले हैं कि क्रोध करने से फायदा नहीं, उल्टा क्रोध करने से नुकसान है, कि क्रोध करने से आप जब क्रोध करें तो ज्यादा गुस्से वाले बनते। एक बार कोई बड़ी समस्या आई, आपको गुस्सा आया, कि दूसरी बार उससे छोटी की समस्या आएगी आप गुस्से में आ जाएंगे। ऐसे करते करते आज कई लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा दिमाग तो तख्ता तवा है, गर्म तवे पानी हालू उठा है, तो छोटी देर में हम रेडी होते गुस्से के लिए। तो वो स्थिति कैसे आई? धीरे धीरे आई, क्योंकि आप करते गए और आपकी जो सहन शक्ति थी वह कम होती गई। तो इसलिए सही बात नहीं है। ठीक है, सबको विजय प्राप्त करना है। और बहुत सारी हम तीनों दिन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, कल हम डिटेल में ये देखने वाले हैं कि क्रोध क्यों आता है, कोई भी बीमारी का इलाज क्या है, कि उसका मूल कारण ठीक करे। तो आपको गुस्सा क्यों आता है वो समझ में आ जाए कि ये कारण है मुझे क्यों गुस्सा आता है, तो उसे दूर करना है। वो सहज नहीं है, ऊपर ऊपर नहीं है, गहराई से समझना पड़ेगा। अच्छे से हम उसकी चर्चा करेंगे, फिर आगे ये भी देखने वाले कि उसके छोटे छोटे भी उपाय क्या हो सकते हैं ना, सारे उपायों की हम चर्चा करेंगे। गुर्जरी एक बहुत ही अच्छे तत्व चिंतक होकर के गए। उन्होंने कहा कि जब मैं 5 साल का था तब ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, और वो तो बहुत गरीब थे। तो जब पिता की मृत्यु सैया पर थे तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटे मैं तो गरीब हूं, मुझे तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु मैं तुझे एक एडवाइस देना चाहता कि सारे जीवन में कभी भी कोई कुछ भी कहे और तुझे गुस्सा आए तो 24 घंटे तक कुछ नहीं बोल, जो भी जवाब देना है 24 घंटे के बाद देना। तो गुरुजी ने कहा प्रॉमिस डैडी, कभी भी कोई भी ऐसी भी परिस्थिति आएगी 24 घंटे तक मैं गुस्सा व्यक्त नहीं करूंगा। गुरुजी लिखते हैं कि पिताजी ने मुझे फंसा दिया कि 24 घंटे के बाद गुस्सा आता ही नहीं है, उल्टा 24 घंटे के बाद तो होता है कि मेरी गलती थी। गुर्जरी लिखते हैं कि भी एक बार, क्योंकि बड़े तत्व चिंतक थे ना, समाज में लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो एक बार लोगों ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई कि तुम बेकार के सब करते हो, तुम बोलते हो सब कोई काम का नहीं है, तुम उल्टा हमको गुमराह कर रहे हो ना, बहुत कुछ बोला। तो तब उनको गुस्सा आया क्योंकि ना सबके सामने ये सब बोला गया था। लेकिन पिताजी की बात याद आ गई। क्या याद आया? 24 घंटा कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, आपने कहा सब, मैं 24 घंटा सोच के फिर आपको जवाब दूंगा। नहीं, तो 24 घंटा खूब सोचा, 24 घंटे के बाद आए, वापस आ गए, फिर उनको कहा थैंक यू, है ना, आप लोगों ने बोला सही बोला, कल जो बोला था तो मुझे सही नहीं लगा था, परंतु मैंने 24 घंटा सोचा और लगा कि आप जो कह रहे हैं इसमें कुछ तो सत्य है, बल थोड़ा है परंतु सत्य है, मुझे अपने आप को भी परिवर्तन करना चाहिए। तो लोग भी बिचारे बिल्कुल ठंडे हो गए, वो तो समझ रहे थे कि लड़ने के लिए आएगा, परंतु सामने भी गुस्सा करने का कोई कारण नहीं। तो ऐसे पोस्टपोन कर दो, बहुत सारी युक्तियां मैं आपको बताऊंगा, परंतु जो सबसे ज्यादा काम करता है ना, वो सब युक्तियां भी काम करती है, 50% 70% ऐसे वो काम करेगी, परंतु अगर आपको कोई फुल प्रूफ युक्ति चाहिए, हाँ फुल प्रूफ चाहिए, देखो अगर फुल प्रूफ चाहिए ना, मेरे विषय में भी कहते, अभी मैं दिल्ली में था 2 दिन पहले, वहां पर संगीता बहन है हमारे बॉम्बे की है, वो 3 साल की थी तब से मैं उसको जानता हूं, उनके फादर को ज्ञान देने के लिए उनके घर जाता था बहुत बार, उसने सबके बीच में बताया कि मैं 3 साल की थी तब से इनको जानती हूं, इनको कभी गुस्सा नहीं आता। उसने कहा कि मैंने ऊंची आवाज से भी बोलते हुए नहीं देखा, कैसे पता है मालूम है, मैंने कुछ किया नहीं, आपको सब सुनाने वाला हूं ना, वो कुछ भी नहीं किया, वो तो बाद में पढ़े, साइकोलॉजी पढ़े तब ये सब मालूम पड़ा। परंतु बचपन से देखो दो बातें थी, एक तो जीवन में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई फुल प्रूफ टेक्निक चाहिए तो अपने इनर सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाओ, और दूसरा है कि ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास किया तो उससे इतनी खुशी आई, सहनशीलता बढ़ गई, एक इनर इंपावरमेंट हुआ, तो भी उसकी जरूरत ही नहीं। और अगर इंटरनल सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है तो सभी एक होमवर्क करेंगे, देखो जरूर करना, लोग होमवर्क करके आते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो समझा के स्पष्ट नहीं कर सकते, कितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दो, तर्क दो, आपको वह समझ में नहीं आएगा, वो प्रैक्टिकल करने से ही आएगा। वो ये प्रैक्टिकल होमवर्क है, जरूर अभी से स्टार्ट कर देना है, यहां से घर जाओ करना, ट्रेन में जा रहे हो करो, ऑफिस में टाइम मिले करो, वापस आओ तो करो, रात को सोने से पहले करो, परंतु होमवर्क जरूर पूरा करना। और वह है आपको ये बात लिखनी है कि मैं खुश हूं क्योंकि, या कैसे लिखी, मैं संतुष्ट हूं, कहा ना सेटिस्फेक्शन, मैं संतुष्ट हूं क्योंकि, और उसके नीचे 108 पॉइंट लिखना। कि तो कहते बाप रे 8 पॉइंट भी है कि मैं संतुष्ट हो सकता हूं। देखो 8 तो मैं आपको बता देता हूं ना, जो सबके लिए है, हम यहां बैठे सबके लिए 8 पॉइंट लग जाएंगे। वह है कि मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मेरी दो आंखें, आज करोड़ों लोग हैं जिनकी दो आंखें नहीं है। मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मैं पैरों से ठीक से चल सकता हूं, है ना। लाखों लोग हैं जिनको लकवा हो गया है, पोलियो हुआ है, वो बेचारे चल नहीं सकते, है ना। मैं संतुष्ट हूं क्योंकि मैं बोल सकता हूं, आज कई लोग तो टोकलाते हैं, स्टैमर भी होते हैं, है ना, हकलाते हैं, परंतु हम स्पष्ट बोल पाते हैं, वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, है ना। ऐसे बड़े शुरुआत कर और फिर आगे और भी छोटी छोटी, 108 क्यों कहा, क्योंकि तब है ना छोटी छोटी बातें भी उसमें लिखी, है ना, और जरूर इसको पूरा करके कल आना, तुम वह बात आ जाए। और भी जो है इसको पाना है, सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, इम्पावरमेंट लानी है, तो ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। विस्डम की बात करें ना, यदि विस्डम को प्राप्त करना है, और मेडिटेशन का अभ्यास इसमें मदद करता है। इसलिए तीनों दिन हम आपके लिए मेडिटेशन का सेशन भी छोटा छोटा रखते हैं। ये नहीं सोचना, कई लोग ये कहते हैं हाँ ये सब आपने बोला ना वो अच्छा है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहन मेडिटेशन करा दे उसमें मजा नहीं है। परंतु मूल चीज तो वह है ना, राकेशा बहन आपको ज्ञान की बातें बताएगी, मेडिटेशन बताएगी, वो इससे भी ज्यादा है कि जिसका एक ओवरऑल बेनिफिट है। तो इसलिए ध्यान से वो जरूर सुन। और एक अभी से आपको बता देता कि क्या करना है। आपसे कभी समुद्र के किनारे पर गए हैं, गए कि नहीं गए, या समुद्र के किनारे पर एक घंटा बैठने के बाद जब उठते हो तो क्या करते हो, कपड़े झाड़ो कि रेत कपड़ों को नहीं लगे। परंतु आज के दिन ऐसा नहीं करना, कुछ ज्ञान की रेत आपकी आत्मा को लगी है ना, उसको साथ में ले जाना है, और उसको साथ ले जाना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो अभी सुना तुरंत लिखो। एक आज भी कहीं डायरी लेके आए, नहीं लाए तो कल जरूर लाना, क्योंकि नहीं तो ना भूल जाएंगे, ना याद रहने वाला नहीं। ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, आपने भी अटेंड की होगी, है ना। अलग अलग नाम है, सक्सेस सेमिनार होते हैं, माइंड पावर सेमिनार होते हैं, है ना। उसमें लिखने नहीं देते, उनके वॉलंटियर्स घूमते रहते हैं, अगर कोई लिखेगा तो आपकी डायरी छीन लेंगे, क्योंकि उनको डर होता है क्योंकि हमारा मटेरियल ले लेंगे, फिर वो लोग भी ऐसी ट्रेनिंग कराने लगेंगे। परंतु यहां ब्रह्मा कुमारी इसमें कोई डर नहीं, और सचमुच लिखने से ही आप उसको याद रख सकते। इसलिए आज नहीं लाए तो कल छोटी सी भी डायरी लेके आना, वो पॉइंट्स को लिखना और फिर रिपीट करना। जो हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, जो रिपीट करते हैं वो 50% याद रहता है, और जो औरों को सुनाते हैं वो 100% याद रहता है। तो सबसे अच्छी बात क्या है, औरों को भी सुनाओ। रिकॉर्डिंग यहां पर जो सुना ना, वो जैसे बस रास्ते में ट्रेन में भी जाते हो ना, तो कोई मिल जाए तो उसको सुनाना, ऑफिस में जाके भी सुनाना, घर पे आके भी सुनाना, फोन करके भी दो चार लोगों को सुनाना अगर टाइम मिले तो, उसमें आपका पक्का पक्का। और हो सके तो उनको कल लेके भी आना।